वो वीर से बेहद प्यार करता था। वीर की जिंदगी में वो इतनी सी भी मुश्किलें नहीं आने देना चाहता था। लेकिन अब आगे, वो वीर से बेहद प्यार करता था। वीर की जिंदगी में वो इतनी सी भी मुश्किलें नहीं आने देना चाहता था। लेकिन अगर अरमान सिंघानिया ने इस तरह से धमकी दी कि वो वीर की जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देगा। अमरेश को दिल में कुछ चुप सा गया था और वो भड़कते हुए बोला, तुम्हारी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ मुझसे है। तुम जो कुछ मेरे साथ करना चाहते हो तुम कर सकते हो, और मैं तुम्हें खुली चुनौती देता हूँ, अगर तुम मेरी आज यहाँ जान भी ले लोगे मैं उफ तक नहीं करूँगा। मैं अपने आदमियों को ऑर्डर दे दूंगा, वे भी यहाँ से वापस चले जाएंगे। तभी अचानक अरमान सिंघानिया बड़े ही जोरों से हंसने लगा। आस्था अरमान सिंघानिया की हंसी देखकर सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी थी, क्योंकि उसने अरमान की छोटी सी मुस्कुराहट देखी थी, वो ठीक चलती थी। लेकिन अरमान का इस तरह से खिलखिलाकर हंसना आस्था के जिस्म का रोंगटा खड़ा कर गया था। वहीं इस बार मारिया और टाइगर भी सहम गए थे, क्योंकि अरमान भले ही नॉर्मल लोगों की तरह हंस रहा था लेकिन वो नॉर्मल इंसान नहीं था, ये बात सभी जानते थे। और शायद आस्था भी अब अरमान को जानने लगी थी। अब अरमान सिंघानिया ने हंसते हुए तुरंत आस्था की कमर पर हाथ रखा, उसने उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लिया और मारिया और टाइगर की ओर एक नज़र देखी। और अगले ही पल आस्था को लेकर वो अपनी प्राइवेट लिफ्ट में आ गया था, और अमरेश रायचंद एक जगह खड़ा का खड़ा रह गया था। गुस्से से उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अपनी ही गाड़ी के शीशे पर दे मारी थी और झल्लाते हुए बोला, नहीं अरमान सिंघानिया, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं जीतने दूंगा। मैं अपने बेटे को इस देश से ही कहीं बाहर भेज दूंगा। तुम इस जन्म में मेरे बेटे तक नहीं पहुंच पाओगे। कहीं न कहीं अमरेश ये कहता हुआ बड़ा ही भयानक लग रहा था। उसने सोच लिया था कि अपने बेटे को यहां से कहीं दूर भेजकर अरमान सिंघानिया की जिंदगी में तबाही मचाएगा। वसुंधरा की उसे कोई खास फिक्र नहीं थी। वहीं दूसरी ओर, अरमान सिंघानिया से मीटिंग हुए 2 से 3 दिन हो चुके थे और वसुंधरा अभी तक बेहोश थी। उसे अभी तक होश नहीं आया था। उसे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। कहां तो वो एक नंबर की जालसाज औरत थी, उसने तो सोचा था अरमान सिंघानिया को जाकर धमकी देकर आएगी, उसे मारने की धमकी देगी तो वो उसका और उसके परिवार का पीछा छोड़ देगा। उसके धंधों के पीछे जो लगा हुआ था वो बंद करवा देगा, वो उनके पीछे नहीं लगेगा। लेकिन यहां तो उसका पूरा का पूरा प्लान खराब हो चुका था, क्योंकि जब से उसे ये पता चला था कि अरमान ही डेविल किंग है और साथ ही साथ उसका बेटा है, उसके पैरों के तले से जमीन खिसक चुकी थी। वो किस मुंह से उसे बेटा कहती? उसने तो कभी माँ होने का ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे उसे माँ का दर्जा दिया जा सके। अब वसुंधरा को होश आने के बाद वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वहीं वीर अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर पूरी तरह से परेशान हो गया था। जब से वीर ने होश संभाला था, उसकी माँ हमेशा से आदमियों की तरह कंधे से कंधे मिलाकर बिजनेस को हैंडल करती थी। हर सिचुएशन को बिंदास हैंडल करती थी। इतना ही नहीं, वो किसी की जान तक लेने से पीछे नहीं हटा करती थी। लेकिन आज अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर वीर को अंदर ही अंदर किलस रहा था, और उसने अपनी माँ की ओर देखकर बोला, रोना बंद कीजिए मॉम, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। रही बात उस अरमान सिंघानिया की, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बहुत जल्द मैं उसकी जान ले लूंगा। अब वसुंधरा को समझ नहीं आया कि वो वीर को क्या बोले कि वो उसकी जान ले या ना ले। अरमान से तो उसे शुरू से ही मोहब्बत नहीं थी, लेकिन अब अरमान की पावरफुल पर्सनैलिटी, उसका पैसा, उसका नाम, दौलत, शोहरत, इज्जत, ये सब देखकर उसे ऐसा लग रहा था मानो कि उन सब चीज़ों पर उसका अधिकार होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ अब अलग ही तरह की खिचड़ी पक रही थी। वहीं दूसरी ओर, अजीत के लिए अबीर का इतना नॉर्मल बिहेवियर बर्दाश्त कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। और अचानक से जब अबीर सिंह राठौड़ अपने शानदार ऑफिस में जाने लगा, ठीक उसी वक्त अजीत ने उससे पूछ लिया, सर आपको क्या हो गया है, क्या आपकी तबीयत ठीक है, अगर आप कहें तो हम डॉक्टर के भी चल सकते हैं। तभी अबीर सिंह राठौड़ ने एक नज़र अजीत को देखा और ना समझी में चिढ़ते हुए बोला, क्यों मेरी तबीयत को क्या हुआ है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अजीत, फिलहाल आज हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, बल्कि आज हम बटरफ्लाई के लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। जैसे ही अबीर ने ये कहा, अजीत तो अपना सर खुजाने लगा था। वो सोचने लगा था कि उसके बॉस को आखिरकार हो क्या गया है, उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है जो इस तरह की बातें कर रहा है। क्योंकि जब से उसे ये पता चला है, उसके बॉस को ये पता चला है कि उसकी बटरफ्लाई असल में अरमान सिंघानिया की बीवी है, जो कि एक डेविल किंग है, अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है, सभी लोगों पर वो राज करता है। ये जानने के बाद भी क्यों ऐसे बिहेवियर कर रहा है, अरमान की बीवी को वो अपनी बटरफ्लाई कह रहा है, तो कहीं ना कहीं अजीत के दिमाग में इस वक्त कितने सारे सवाल चल रहे थे। तभी अबीर सिंह राठौर ने शहर के एक मशहूर मॉल के सामने अपनी गाड़ी रुकवा ली थी और कितने ही सारे ड्रेस, ज्वेलरी, एसेसरीज, अलग अलग तरह के आइटम्स जो भी अबीर को पसंद आए वो सब उसने खरीद लिए थे। और खरीद कर वो सीधा कहीं और नहीं बल्कि अरमान सिंघानिया के ऑफिस में ही पहुंच चुका था। वहीं दूसरी ओर आस्था इस वक्त काफी ज्यादा डरी हुई थी, हालांकि वो अरमान के साथ थी। वहीं अरमान केवल बीच बीच में एक नजर आस्था को देखकर उसके बाद वो कहीं खो जाता। आस्था को तो अरमान से प्यार था और अरमान भी आस्था से प्यार करता था, और कुछ दिन पहले वो दोनों एक दूसरे को बेहद भरपूर प्यार जता रहे थे। लेकिन अब आस्था को सिचुएशन काफी ज्यादा वियर्ड सी लग रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। फिलहाल अपने प्राइवेट लिफ्ट के थ्रू अरमान जल्दी ही आस्था को अपने केबिन में ले आया था और उसने आस्था को कहीं और नहीं बल्कि अपनी गोद में बिठाया था। आस्था ने अरमान को कहने की कोशिश की थी, अरमान जी, आपकी कंडीशन अभी ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे कहीं और बैठ जाना चाहिए। जैसे ही ऐसा कहकर आस्था उठकर चलने लगी, अरमान ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर मजबूत कर दी थी और बोला, हिलना भी मत। अब आस्था अरमान की ये बात सुनने के बाद लाचारी से कुछ बोल नहीं पाई थी। अरमान कितनी देर तक आस्था को अपने पास इस तरह से बिठाए रखा था और अचानक अपना सर आस्था के कंधे पर रख दिया था और आंखें बंद करके बोला, आई नीड सम सुकून आस्था। तब अरमान की आवाज सुनकर आस्था का गला भर आया था और फटाफट से उसने हल्का सा मुड़कर अरमान को जोरों से गले से लगा लिया और कुछ आंसू उसकी आंखों से बह निकले। तब अरमान आस्था के सर पर सहलाते हुए बोला था, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूं। तभी आस्था आंसू भरी आंखों से बोली, आखिरकार आपको क्या हो गया है, आप जानते हैं हमें आपसे डर सा लग रहा है, आपका बर्ताव हमें अजीब सा लग रहा है, प्लीज आप पहले जैसे हो जाइए ना, एकदम क्यूट और स्वीट से, एकदम स्वीट से हबी हो जाइए ना प्लीज। ऐसा बोलकर आस्था अपनी नाक को थोड़ा सा मसलने लगी थी क्योंकि रोने की वजह से उसकी नाक में हल्की हल्की खुजली होने लगी थी। तब अरमान उसकी ओर बिना एक्सप्रेशन के देखकर बोला, मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूं और आप इतना डर क्यों रही हैं, मैं आपको थोड़ी ना कुछ कह रहा हूं। हाँ मैं मानता हूं मैंने उस दिन गलती की, उसकी मैं आपसे माफी मांग चुका हूं, साथ साथ खुद को भी तकलीफ दे चुका हूं, तो फिर आप क्यों परेशान हो रही हैं। जैसे ही अरमान ने बड़े ही प्यार से ये कहा, आस्था मन ही मन में सोचने लगी थी, अब हम इन्हें क्या बताएं कि हमें इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है।
तभी अरमान उसके होठों को बड़े ही ध्यान से देख रहा था और थोड़ा सा आस्था के करीब जाकर उसने अपने होठों को उसके होठों पर रखकर सॉफ्टली और जेंटली वो किस करने लगा था। अरमान की किस बड़े ही सॉफ्ट और जेंटल वे में कर रहा था ताकि आस्था को बेटर फील करा सके, तो इसीलिए आस्था के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी क्योंकि थोड़ी देर पहले जो उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब सा वियर्ड लग रहा था अब वो एक पल में ही ख़त्म हो गया था। लेकिन तभी उसके केबिन की दस्तक हुई। अब अरमान और आस्था दोनों एक अलग हटकर खड़े हो गए थे। वहीं अरमान घूरते हुए दरवाजे की ओर देखने लगा था कि आखिरकार किसकी हिम्मत हो गई इस तरह से अरमान सिंघानिया का दरवाज़ा खटखटाने की। अभी अरमान ने ये भी नहीं बोला था कि वो अंदर आ जाए, तुरंत ही दरवाज़ा खुल चुका था और अबीर सिंह राठौड़ सामने से चलकर आ रहा था। अबीर को अपने सामने देखकर आस्था की तो सिटी पिटी ही गुम हो चुकी थी और वो बेहद घबरा गई थी। तभी अबीर वहां आस्था को देखता है। आस्था जो कि थोड़ी देर पहले रो रही थी, तो रोने की वजह से उसकी आंख, साथ ही साथ उसकी नाक जो कि उसने थोड़ा तेजी से रगड़ दी थी, वो पूरी तरह से लाल हो गई थी। अबीर ने एक नज़र भरकर आस्था की ओर देखा। वहीं अरमान को अबीर का इस तरह से आस्था को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और वो तुरंत आस्था के सामने जाकर खड़ा हो गया और अबीर की ओर देखकर तिलमिला बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से अरमान सिंघानिया के ऑफिस में आने की। मारिया और टाइगर दोनों ही इस वक्त अबीर सिंह राठौड़ के साथ मौजूद थे। उन्होंने उसे रोकने की बेहद कोशिश की थी लेकिन अबीर अच्छी तरह से जानता था कि वो मारिया और टाइगर का मुकाबला नहीं कर सकता है, इसीलिए उसने उन दोनों से बोला कि वो अरमान सिंघानिया से माफ़ी मांगने के लिए आया है, इसीलिए उन दोनों ने उसे आने दिया था। अरमान को उन्होंने फ़ोन भी किए थे लेकिन उस वक्त अरमान आस्था में पूरी तरह से खोया हुआ था, उसे किस कर रहा था, तो इसीलिए वो उसके फ़ोन का आंसर नहीं कर पाया और अबीर सिंह राठौड़ को सब्र नहीं हुआ और वो सीधा अरमान के केबिन में चला आया। जल्दी ही मारिया टाइगर अरमान के दाएं बाएं खड़े हो गए थे। वहीं अबीर सिंह राठौड़ के सभी आदमी इस वक्त वहां मौजूद थे और अरमान सिंघानिया को घूर कर देख रहे थे। तभी अबीर सिंह राठौड़ एकदम जेंटल टोन में बोला, देखो अरमान सिंघानिया, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुमसे बातें करने के लिए आया हूँ, किसी तरह का कोई झगड़ा या तमाशा करने के लिए नहीं आया हूँ, और एक मिनट, ऐसा बोलकर उसने अजीत को इशारा किया और जल्दी ही अजीत कितने ही सारे अलग अलग तरह के बॉक्स और गिफ्ट रैपर्स के साथ वहां मौजूद था। वो सभी गिफ्ट रैपर अरमान के केबिन में ही पड़े सोफे पर रख दिए गए थे। पूरा का पूरा सोफा भर चुका था। तभी अरमान तिरछी सी नजर उन सभी गिफ्ट रैपर्स की ओर देखकर अबीर की ओर देखकर पूछता है, ये सब क्या है, तुम ये बताओ, जवाब दो। तभी अबीर बोला, एक सेकंड बताता हूँ। ऐसा बोलकर वो अरमान के ठीक पीछे जाकर आस्था के सामने खड़ा हो गया। अब तो अरमान के माथे पर बल पड़ गए थे। अपना सीधा हाथ उठाकर उसने अपने माथे पर 2 से 3 बार और उस पर टैप किया। वहीं अब टाइगर और मारिया दोनों ही परेशान हो गए थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो इस सिचुएशन में करें तो करें क्या। इसीलिए मारिया ने जल्दी ही एक ग्रुप मैसेज छोड़ दिया था और वो ग्रुप मैसेज किसी और को नहीं बल्कि आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान को मिला था। आहान जो कि उस वक्त सबके सब एक साथ हाल में जमा थे, नाश्ता करने के बाद सब एक साथ बैठे हुए थे। जैसे ही उन्हें ग्रुप मैसेज आया, सबने एक दूसरे की ओर देखा और फटाफट से आनन फानन में वो चारों एक साथ दौड़कर सिंघानिया मेंशन से बाहर निकले। अब तो उन सबको इस तरह से भागता दौड़ता देखकर दादाजी और बाकी सब पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। दादाजी उन्हें रोकने की कोशिश भी कर रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ है, इस तरह से दौड़ लगाकर क्यों जा रहे हो, लेकिन उस वक्त उन्होंने किसी से कोई जवाब नहीं दिया था। फटाफट से गाड़ी में बैठकर वो भी अरमान के ऑफिस की ओर रवाना हो चुके थे। कहीं ना कहीं टाइगर मारिया को इस बात का एहसास हो गया था कि अगर किंग के सामने अबीर इस तरह से आस्था को देखेगा तो पक्का उनका खून खराब होना ही था और शायद उनका किंग भी अपना कंट्रोल पूरी तरह से खोने वाला था और एकदम जल्लाद बनने वाला था, जिसके बारे में फिर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि अरमान सिंघानिया कितना खतरनाक जल्लाद बना करता था। वहीं आस्था अबीर को अपने सामने देखकर पूरी तरह से घबरा गई और कांपती हुई आवाज में बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आप हमारे पीछे क्यों नहीं छोड़ देते हैं, बार बार क्यों आप हमारे सामने आ जाते हैं। तभी अबीर ने अचानक अपने दोनों हाथों को उठाकर आस्था के कंधों पर रख दिया और शांत कराते हुए बोला, रिलैक्स बटरफ्लाई, रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने सारी बातें पता लगवा ली है कि तुम्हारी शादी जबरदस्ती अरमान सिंघानिया के साथ हुई है और तुम तो इस शादी में रहना भी नहीं चाहती हो, तो तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा।